मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे प्रारंभिक परीक्षा की जो रणनीति होनी चाहिए इसके बारे में अपनी ओर से आपको कुछ सलाह नुमा बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ एक दो दूसरी बातों को देख लेते हैं। हालांकि ये बीच के तीन दिन रहे हैं, अरसा लंबा रहा है, तीन दिन दिखाई देते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि चूंकि ये तीनों छुट्टी के दिन थे इसलिए कोई बहुत ऐसी घटना नहीं घटित हुई है जिसे लेकर हम बहुत विस्तार के साथ बातचीत कर सकें। हमारे प्रधानमंत्री जी की बांग्लादेश की यात्रा पूरी हो चुकी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के अब बहुत से आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। आज भी मैं आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं और इस पर जो लेख आएंगे मित्रों, उन लेखों के आधार पर मैं आप सबको आर्टिकल प्रोवाइड करूंगा करेंट कंटेंट के अंतर्गत, और उसमें बातें बहुत क्लियर हो जाएंगी क्योंकि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको लेकर के एनालिसिस की जरूरत पड़े और मैं आपका उतना समय लूं। मुझे लगता है कि उसी के तहत आपकी बात बन जाएगी। लेकिन जो प्रधानमंत्री की यात्रा रही है उसमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु मिला है और वह बिंदु है मतुआ समुदाय को लेकर। मतुआ बेसिकली एक ग्रुप है, कम्युनिटी है जिसे शेड्यूल कास्ट में रखा जाता है। शेड्यूल कास्ट खासकर इस समुदाय की भारत में जो सबसे ज्यादा आबादी है वह जो हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है उसकी उत्तर दिशा में है और इनकी संख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास है। इस समुदाय के लोग दो देशों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, एक तो हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में है और दूसरे बांग्लादेश में। और आप देखिए जब हम पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश कहते हैं तो पश्चिम बंगाल का मतलब क्या हुआ, इसको हम बंगाल भी कह सकते थे लेकिन नहीं, जो पूरा का पूरा जो बांग्लादेश है विभाजन से पूर्व एक था और जब विभाजित किया गया तो उसमें जो पूर्वी बंगाल का जो हिस्सा था वो पाकिस्तान को दिया गया, पश्चिमी बंगाल का हिस्सा वो भारत को दिया गया तो भारत ने उसका नाम फिर पश्चिम बंगाल रहने दिया। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के पास चला गया था और 1971 के युद्ध के बाद जब ये पूर्वी बंगाल आजाद हुआ तो इसने अपना नाम रखा बांग्लादेश। तो इस तरह से जो मतुआ समुदाय है पश्चिम बंगाल के उत्तर में है और बांग्लादेश में है। हमारे यहाँ इनकी संख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास है और अभी जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं आप उनके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। ये जो संप्रदाय है जैसा कि मैंने कहा कि शेड्यूल कास्ट का संप्रदाय है और खासकर इसी के साथ ही एक और शब्द आपको न्यूज में सुनने को मिला होगा, मतुआ महासंघ। ये इस संघ की स्थापना या कह लीजिए इस संगठन की स्थापना हरिचंद ठाकुर जी ने की थी। हरिचंद ठाकुर जी ने 1860 के आसपास, याद कीजिए कि 1860 के आसपास भारत में इस तरह के बहुत से समाज सुधार संबंधी आंदोलन चले थे और जब हम समाज सुधार की बात करते हैं तो उसमें धार्मिक सुधार अपने आप शामिल हो जाते हैं। तो हरिचंद ठाकुर जी ने एक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू किया और खासकर उन्होंने 12 सूत्र इसके लिए दिए जिसमें सोच कर देखिए कि जो टॉप पर था वो था शिक्षा, यानी कि इस समुदाय के लोगों को शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने एक मंत्र दिया था स्वयं दीक्षित का, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि आप स्वयं अपने बारे में सोचें और अपने उद्धार करने के लिए सामने आए। ये दोस्तों ये वैष्णव पंथ के लोग होते हैं, यानी विष्णु, भगवान विष्णु को मानने वाले होते हैं। तो हरिचंद ठाकुर जी ने दो बातों को सबसे ज्यादा महत्व दिया। पहला था कीर्तन, भजन कीर्तन जिसे आप कह सकते हैं। याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या पश्चिम बंगाल में इससे पहले, काफी पहले, क्या कोई और ऐसे संत हुए थे जिन्होंने भजन कीर्तन पर बहुत ज्यादा जोर दिया और एक तरीके से कह लीजिए कि उनका नाम भजन कीर्तन का पर्यायवाची बन गया है। मैं जानबूझकर के उनका नाम नहीं बता रहा हूं, आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए, आपको नाम मिल जाएगा। तो एक था भजन कीर्तन और दूसरा था हरि नाम सुमिरन। देखिए हरि मतलब कृष्ण होता है और वे जो विष्णु है, राम और कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो ये सब वैष्णव परंपरा के लोग हैं। तो मतुआ संप्रदाय के बारे में थोड़ी सी ये बातें मुझे बतानी थी, क्योंकि हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में कुछ पूछ लिया जाए, क्योंकि अखबारों में और डीडी चैनल पर इस समुदाय की काफ़ी चर्चा हो रही थी। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे, तो वहाँ जो मंदिर है इनसे संबंधित, उसकी यात्रा भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी, और इसी संदर्भ में मतुआ समुदाय की चर्चा आई थी। फ्रेंड्स, दिल्ली राज्य से संबंधित जो विधेयक पारित होना था वो पारित हो चुका है, और इस विधेयक को लेकर के अब काफ़ी लोगों में हलचल है और इसकी काफ़ी आलोचना की जा रही है। इस पर मैं आप सबसे पहले बात कर चुका हूं, लेकिन आज केवल याद दिलाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूं कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और इस साल के मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी। तो इस पर जहाँ भी आपको सामग्री मिलती है आप बकायदे उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाएं। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और आज का मेरा मुख्य विषय है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। दोस्तों, लगभग हम कह सकते हैं कि अब 3 महीने का वक्त बाकी है प्रारंभिक परीक्षा होने में। मुझे नहीं मालूम कि अभी आपकी तैयारी का स्तर क्या है, उसका स्वरूप क्या है। मैं यहां जो बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो एक मोटी मोटी बातें हैं। मैं आपसे ये नहीं कहने जा रहा हूं कि आपकी जो रणनीति है वो इसी तरह की होनी चाहिए, नॉट एट ऑल, क्योंकि आपके सबके तैयारी के स्तर अलग हैं, आप सबकी बैकग्राउंड अलग है। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेकेंड टाइम सर बैठ रहे होंगे, थर्ड टाइम बैठ रहे होंगे। उनमें से आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी प्री क्वालिफाई कर चुके होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, या मेंस भी क्वालिफाई कर चुके होंगे लेकिन इंटरव्यू में उतने मार्क्स नहीं मिले होंगे कि उनके सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाए। और यहां तक कि अगर सेलेक्ट भी हो गए हैं तो हो सकता है कि अपनी रैंकिंग बेहतर बनाने के लिए आप बैठ रहे हों। तो आप देखिए कि जहां इतना ज़्यादा फासला हो पृष्ठभूमियों का, तो वहां के लिए किसी एक रणनीति की बात करना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। इसीलिए मैं सामान्य रणनीति के बारे में आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो ये है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो प्री एग्जामिनेशन है, और यहां तक चाहे वो हमारा मेंस ही क्यों ना हो, जो जनरल स्टडीज का जो विषय है, इसके 4 इंपॉर्टेंट स्तंभ हैं जिन्हें मैं 4 पिलर्स ऑफ जनरल नॉलेज कहता हूं, 4 पिलर्स। ये 4 पिलर्स कौन है इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं। इन 4 महत्वपूर्ण विषयों का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है आपके प्री एग्जामिनेशन में, किसी भी साल अगर आप पिछले 7 सालों के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लें तो कभी भी आपको बिलो 60% नहीं मिलेगा। मतलब केवल इन 4 विषयों से ही 60%, यानी कि 100 में 60 प्रश्न पूछे गए हैं, और ऐसा भी 1 साल हुआ है बस। अदरवाइज अगर हम उस 1 साल को निकाल दें तो एवरेज 65 का आ जाता है, और पिछले साल तो 70 से 72% प्रश्न केवल इन 4 विषयों से पूछे गए हैं। जब मैं इन 4 विषयों की बात कर रहा हूं तो यहां मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि इन विषयों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी शामिल हैं। आपको इसे समझना होगा, क्योंकि जब करंट अफेयर्स की बात होती है आप सीधे सीधे करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिए, जो पिछले साल जो हमारा प्री एग्जामिनेशन हुआ है, तो पता लगेगा कि आप मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन ढूंढ पाएंगे, और लगेगा कि अरे करंट अफेयर से तो केवल 3-4 क्वेश्चन ही आए हैं, और आप निराश हो जाएंगे। और अगर आप ये डिसीजन लेते हैं कि हाँ 3-4 ही आए हैं, ये निष्कर्ष रहता है आपका, तो जो फिर आप अपने प्रिपरेशन की रणनीति बनाएंगे उसमें गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर आप करंट अफेयर्स को बहुत इजी तरीके से लेंगे कि अरे इससे तो ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, तो क्या फ़ायदा है ज़्यादा मेहनत करने की, और ये बहुत बड़ी गलती होगी। दोस्तों, अभी जिन 4 विषयों की मैंने बात की है, इनमें से 2 विषय ऐसे होते हैं जिनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों में बहुत का संबंध करंट से होता है, समसामयिकता से होता है, स्पेशली जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और फिर दूसरा जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां तक कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन के तहत जो सैद्धांतिक प्रश्न पूछे जाते हैं उन सैद्धांतिक प्रश्नों के बैकग्राउंड में भी करंट अफेयर्स होता है। लेकिन चूंकि स्टूडेंट की निगाह उतनी तीखी नहीं होती है, तेज नहीं होती है, तो वो उसे पकड़ नहीं पाते। तो मेरे कहने का यहां जो मतलब है कुल मिलाकर के ये, कि अगर करंट अफेयर्स पे तीन चार क्वेश्चन आपको मिल पा रहे हैं, तो आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि केवल इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो चार विषय हैं आपकी रणनीति के सबसे प्रमुख आधार होने चाहिए कि मुझे इन चार विषयों में कोई भी ढिलाई नहीं देनी है, चाहे कोई कुछ भी कहे। तो अब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए मेरी एक विनम्र सलाह है, और कुल मिलाकर वो दोस्तों ये कि अब जो अप्रैल का महीना आ रहा है, इस अप्रैल के महीने को आप इन चारों विषयों को समर्पित कर दें। यदि आपके पास थोड़ा सा और वक्त हो तो इसमें आप एनवायरमेंट को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट से भी अब पूछे गए प्रश्नों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। हम एटलीस्ट 10% क्वेश्चन तो मान ही सकते हैं। तो अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त निकल सके तो आप एनवायरमेंट को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज चार विषयों पर तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी ही है। अब आप देखिए कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है और आपको कितना समय इसे डिवोट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी हो, और अगर तैयारी पूरी भी हो चुकी हो तब भी मैं कहूंगा कि अप्रैल महीने को आप इन चारों विषयों को डेडिकेट करें। तब आप कैसे डेडिकेट करेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी तो हो चुकी है, तो आपको फिर चाहिए कि इन विषयों को आप बार बार दोहराएं, बार बार दोहराएं, और दोहराने के प्रोसेस में आप उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करें जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना होती है, और ऐसे बिल्कुल आप टॉपिक्स निकाल सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आपको ऐसे टॉपिक बकायदे समझ में आ जाएंगे। हो सकता है कि मैं किसी अपने लेक्चर में वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में भी आप सबसे कुछ बातें करूं। तो दोस्तों, ये बात मैंने अभी आपसे रणनीति के तहत केवल अप्रैल के बारे में बताई है। आगे भी हम लोग इस विषय पर और आगे कुछ चर्चा करेंगे। काफी बातें हैं आप सबसे बात करने के लिए, तो चूंकि अभी वक्त नहीं है जिसमें कि वो सारी बातें पूरी हो सके, तो ठीक है, अब उस हिस्से को हम लोग नेक्स्ट के लिए छोड़ते हैं। फिलहाल अप्रैल के लिए तो मैंने आपको कुछ न कुछ बता ही दिया है कि आप अप्रैल का कैसे ज्यादा अच्छे तरीके से उपयोग करके अपने लिए थोड़े से बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन बहुत से न्यूज़पेपर्स चूंकि होली के कारण आज नहीं आए हैं दोस्तों, तो वो आपको नहीं भी मिलेंगे, लेकिन जो न्यूज़पेपर्स मिल सके हैं उनके ही प्रेस क्लिपिंग्स आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेज में एडमिशन लेने वाले हमारे दोस्त हैं कुसुम जोशी, तो कुसुम जोशी जी आपका स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ के नाम हैं श्रुति सुमन, ज्योति प्रयागराज से, सौरभ प्रताप, आशु सैनी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, रविदत्त सजल देसाई और सोनल सारतबे। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।